ये भी हम आपको बताएं कि सन 1979 में, ठीक है, इनकलाब के 50 दिन के बाद एक वाकया पेश आया था, और वो यही था कि रेफरेंडम मुनाकिद किया गया, और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह से, हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई इस तमाम आवाम की हमें हिमायत हासिल है तो हम लोग ऐलान कर दें कि इस्लामी जमहूरिया है हमारे ये सिस्टम है, लेकिन इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ताकीद के साथ कहा कि नहीं, रेफरेंडम हर हाल में मुनाकिद किया जाएगा, और उसमें अगर कोई और लोगों की राय है, अगर उनके कोई और वोट है और किसी और सिस्टम को पसंद करते हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सिस्टम आज जो है वो एक मुकम्मल तरीके से लागू हो गया, इस्लामी जमहूरिया ईरान। जनाब मीसम रज़ा ख़ान साहब, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, बहुत बहुत खुश आमदीद। बताइए हमारे नाज़रीन को इस दिन के हवाले से इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की ये ताकीद, इसकी वजह हम जानना चाहेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोगों की खिदमत में और मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और मुख्तलिफ़ मुनासिबतों बिलखसूस ये अय्याम ईद चल रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तकियान हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है आज हिंदुस्तान में और दूसरे जगहों पर, इस्लामी जमहूरी ईरान में कल नहायत ही जोश व खरोश से मनाया गया, ये इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस वक्त आप तारुफ करा रहे थे उस वक्त मेरे जहन में वही चीज़ आई इत्तेफाक से जो आपने सवाल में दोहरा दी कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने रेफरेंडम के अमल को दिखा करके दुनिया के सामने इस तरह की सियासी बसीरत का सबूत पेश किया है कि जो किसी आलिम दीन से एक ऐसा इंसान जिसने साइंस के सियासत के मैदान में कोई डिग्री हासिल न की हो, किसी यूनिवर्सिटी में और किसी कॉलेज में और सियासत के मैदान में डॉक्टरेट न किया हो, तहकीक न की हो, उसके इस तरह के इकदाम से ये अंदाज़ा होता है कि उलूम इस्लामी जिसमें आलम थे बानी इनकलाब इस्लामी हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, यानी अपने ज़माने के तमाम उलमा से बरतर थे, आलम का मतलब यही होता है, इस तरह की सियासी बसीरत कभी मजहबी की सोच के अलावा सियासी बसीरत कभी मुजाहरा करके गोया अमली तौर पर यह साबित फरमाया आपने कि इस्लाम जो है सियासत से कोई जुदा चीज़ नहीं है, यानी दीन और सियासत जो है अलग अलग नहीं है बल्कि एक चीज़ है, और यही वजह है कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो रेफरेंडम को जाहिर किया, यानी जैसा कि अभी आपने भी कहा कि सारे लोग चाह रहे थे और सारे इनकलाब ही बर्पा कर दिया इसीलिए कि जो है वो हम आपके चाहने वाले हैं लिहाजा आप जो चाहें करें हम आपके साथ हैं, लेकिन इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर इक्तफा नहीं की बल्कि आपने रेफरेंडम कराया ताकि दुनिया देख ले कि ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का मामला नहीं है, बल्कि 98.2% लोग, 98% 2% लोग जो हैं वो लोग इस्लामी जमहूरी निज़ाम के हामी हैं, यानी वो ऐसा निज़ाम हुकूमत चाहते हैं जिसकी बुनियादें इस्लामी अहकामात और जमहूरियत पर उस्तवार हों। और देखिए, एक तो ये आपने ये जो सवाल किया इसमें तो इतनी गुंजाइश थी, इसके जवाब में ये काफ़ी था, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कहना कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस एलानिया इकदाम से दुनिया के मौजूदा तमाम निज़ामों को चैलेंज किया। आपने जो उस वक्त तक और आज भी जो निज़ाम दुनिया में कायम है वो डेमोक्रेसी का है, डेमोक्रेसी के साथ साथ किसी भी निज़ाम में उसका दीनी निज़ाम शामिल नहीं है, चाहे वो कम्युनिज्म हो जो लादीनियत के कायल हैं, या डेमोक्रेसी जो जिसके जो लोग अलमबरदार हैं वो ईसाइत वगैरह के कायल हैं, दीन उनका ईसाइत है, लेकिन उनके दीन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो अपने दीन को जमहूरियत और डेमोक्रेसी के साथ शामिल कर सकें। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने दो लफ्ज़ को मुरक्कब करके, यानी इस्लामी और जमहूरिया, एक तरफ इस्लामियत और दूसरी तरफ जमहूरियत, दो लफ्ज़ों को मुरक्कब करके आपने एक माना पहनाया, और वो माना हुआ ऐसा इस्लामी निज़ाम जिसमें जमहूरियत पाई जाती हो, गोया आपने इस्लामी निज़ाम को आमेरियत से हमेशा हमेशा के लिए खारिज फरमा दिया, अलबत्ता खारिज था यानी ऐलान फरमा दिया कि आमेरियत इस्लाम में नहीं है, गुंजाइश नहीं है। हाँ, अहकामात को तस्लीम करने के बाद, अहकामात को मानने के बाद अब यहाँ पर आपको यह अख्तियार नहीं होगा कि आप जो चाहें करें, आपको यह अख्तियार है कि आप इस्लाम को न माने, दीन को तस्लीम न करें। लेकिन कि दीन को तस्लीम करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमारा जो जी चाहेगा करेंगे, तो आप इसको आप आमिरियत नहीं कह सकते। बल्कि एक निज़ाम को तस्लीम करने के बाद उस पर आप अमल के पाबंद बनते हैं। जैसे आप किसी जमहूरी निज़ाम में जब वोट देते हैं तो वोट देने से पहले तक आपको ये अख्तियार हासिल होता है कि आप जिसको चाहें मुंतखब करें, लेकिन मुंतखब होने के बाद उस हुकूमत के अहकामात से दस्तपेची आप जो है सरपेची जो है वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कई पैगामात दिए। एक तो दुनिया पर साबित किया कि ये हमारे अपने ही सारे खाली चाहने वाले नहीं, बल्कि 98% से ज़्यादा लोग इस निज़ाम के हामी हैं, इसके हक में वोट दे रहे हैं, और इस्लाम जो है वो जमहूरियत से अलग कोई चीज़ नहीं है।
जो वाक़यात पेश आए थे इस दिन, एक तो ये था कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह, बहुत सारे गुरोह ऐसे थे जो उससे पहले तो दावेदार थे जमहूरियत के, लेकिन जैसे ही इमाम खुमैनी ने यह मशवरा दिया कि हाँ या ना, इसमें आप जवाब दीजिए, यानी हामी हैं आप इस्लामी जमहूरिया ईरान के, या अगर आपको कोई और निज़ाम चाहिए तो नहीं के वो जो आपको वोट है उसके ऊपर लिखिए कि आपको कौन सा दूसरा निज़ाम पसंद है, तो उसी वक्त बहुत सारे लोग अलग हो गए थे। उन लोगों ने कहा था कि हमें जो है ये सिस्टम पसंद नहीं है, और अपनी मुखालफत का पहले उस पर ऐलान करके बाद में वो शामिल होना चाहते थे। जब आपने पहले मरहले में ही वोट नहीं दिया तो आगे क्या आप शामिल होंगे, और कितना आप भरोसा करेंगे सिस्टम पर और कितनी मदद करेंगे, जो आखिर में पता भी चला कि बहुत सारे जो मुखालिफ गुरोह हैं उसी ज़माने से इन लोगों ने जन्म लिया था। मीसम रज़ा ख़ान साहब, इस्लामी जमहूरिया कितनी ताकीद थी इमाम खुमैनी इन दोनों अनासर पर, वजह क्या है इसकी?
असल में मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके बात कहना चाहता हूँ कि जब इंसान इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ता है तो बार बार ऐसे लम्हात आते हैं कि सोच में पड़ जाता है कि ये इंसान वाकई मादी इंसान था या क्या था। अब फिर मैं वही कहूँगा कि एक इंसान जो हौज़े इल्मिये कुम और हौज़े इल्मिये नजब से बुलंद हुआ, उस इंसान की फ़िक्र इतनी वसी थी, इतनी गहरी थी कि वो सिर्फ खित्ते के शाही निज़ाम को नहीं देख रहा था, वो ख़ुद अपने मुल्क के भी सिर्फ शाही निज़ाम को नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी निगाह पूरी दुनिया के निज़ाम पर थी, यानी मगरिब की डेमोक्रेसी और मशरिक के कम्युनिज्म निज़ाम पर और सिस्टम पर। आप देखें कि ईरान में जहाँ एक तरफ बादशाहत थी, वहीं एक तरफ ईरान के पड़ोस में रूस जैसे और चीन जैसे और दूसरे मुल्कों में कम्युनिस्ट निज़ाम था। लेकिन आप ना मगरिब की डेमोक्रेसी से मुतासिर हुए, ना आप अपने मुल्क और अपने इलाके की बादशाहत से मुतासिर हुए, ना आप इस मौजू अपने अतराफ़ में और अपने पड़ोस में जो कम्युनिस्ट निज़ाम कायम था, जिसका ईरान में भी काफ़ी असर रसूख था, और वो लोग भी जो है वो शुरू में तहरीक में शाह के ख़िलाफ़ शामिल हो गए थे, उनसे किसी से आप एक लम्हे के लिए भी मुतासिर नहीं हुए। और अपनी उनकी क्या ताकत थी, ना उनके पास कोई मुसल्ला फ़ौज थी, ना उनके पास मुसल्ला अफराद थे, ना उनके पास अरबाब हल्लो अक़्द थे, ना बहुत बड़ी उनके पास क़ुव्वत क़हरिया या जबरिया थी, बल्कि सिर्फ अल्लाह की ताकत पर भरोसा करते हुए उन्होंने ऐलान फरमाया अपने इरादे का, अपने अज़्म का, अपने मौक़िफ़ का। और वो क्या था कि उनका मौक़िफ़ ख़ुद उन्होंने जिस वक्त रेफरेंडम के लिए वोट देने के लिए आपने आमादगी ज़ाहिर की है और रवाना हुए हैं, उस वक्त आपने सिर्फ ये फरमाया कि मैं इस्लामी जमहूरिया ईरान के इस्लामी जमहूरिया के हक़ में वोट देने जा रहा हूँ, आवाम को हक़ हासिल है कि वो इसके हक़ में वोट दें या न दें। मैं पढ़ रहा था कि जब आप निकले और वोट देना चाह रहे थे तो इतना जम गफ़ीर था कि गाड़ी से बाहर नहीं आ पाए, नतीजे में गाड़ी के अंदर ही आपको अपनी राय का इजहार करना पड़ा और आपने वोट दिया। इस वजह से बहुत से जो जर्नलिस्ट थे उस वक्त, सहाफ़ी थे और रिपोर्टर्स थे, उनको ये मौका नहीं मिल सका कि उसको कवरेज दे पाते उस तरह से जिस तरह का उसका हक़ था। तो आपका सवाल पीछे ना चला जाए इसलिए मैं बात को तूल नहीं देना चाहता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि न आप बादशाहत से मुतासिर हुए, न वो कम्युनिस्ट निज़ाम से मुतासिर हुए, न वो मगरबी डेमोक्रेसी से, बल्कि एक जो अजीम नारा आपने दिया जिसका शोहरा भी बहुत हुआ, ला शर्किया वला गर्बिया, यानी न हमें मशरिक का निज़ाम चाहिए और न मगरिब का निज़ाम चाहिए, बल्कि इस्लामी निज़ाम चाहिए। कौन इस्लामी निज़ाम? जिसमें जमहूरियत है, यानी आज़ादी बयान का हक़ है, आज़ादी राय का हक़ है, सब कुछ है, लेकिन हुकूमत के कानून को तस्लीम करने से पहले तक। جب آپ نے اسلامی نظام کے حکومت کو تسلیم کر لیا تو اب آپ کو اس کے قانون کو ماننا پڑے گا.
بالکل
جبکہ جمہوریت کا عظیم نمونہ آپ نے یوں پیش کیا, جبکہ آپ ولی فقیہ تھے اپنے دور کے. ولی فقیہ ہونے کے حق کے حساب سے آپ کو دینی جمہوریت کے لحاظ سے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ جو ہے وہ اعلان کرتے کہ ریفرنڈم ہو, لیکن نہیں, آپ نے دین کے ساتھ ساتھ ووٹ کا اور ریفرنڈم کا انعقاد کرا کے ثابت کیا کہ دین اور جمہوریت کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے, دین اور سیاست کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے, بلکہ بقول آیت اللہ مدرس کے کہ ہماری سیاست ہماری دیانت اور عین دین ہے. یہ ہماری سیاست کوئی غربی سیاست نہیں ہے جس میں سازش ہو, عیاری ہو, مکاری ہو, بلکہ ہماری سیاست ہی ہماری دیانت ہے جو ہمارا دین ہے. تو امام نے لا شرقیہ کہہ کر کے کمیونسٹ نظام کو کنڈم کیا, لا غربیہ کہہ کر کے مغربی ڈیموکریسی کو کنڈم کیا, اور دینی جمہوریت کا نعرہ بلند کر کے آپ نے اسلامی جمہوری نظام قائم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کیا کہ اسلامی نظام میں جمہوریت کو پوری طرح سے دخل ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود قرآن کی آیت ہے کہ جب تم اپنے امور کو انجام دو تو شورا بینہم, آپس میں مشورے کر لو. ووٹ دینا کیا ہے؟ ایک دوسرے سے مشورہ کرنا کیا ہے؟ جمہوریت تو اسی کا نام ہے کہ جب کوئی فیصلہ کرنا چاہیں, کوئی امر نافذ کرنا چاہیں تو چند لوگوں کی رائے سے کریں, چند لوگوں کے مشورے سے کریں, چاہے وہ ووٹ کے ذریعے ہو یا اعلان کے, یعنی چاہے صوتی ہو چاہے تحریری ہو. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس بینش کا اور اپنے موقف کا دینی, اب آپ دیکھیں کہ دینی جمہوریہ اس کے پہلے تک یہ تصور ممکن نہیں تھا, کہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دینی اور جمہوری, یا لا دینیت تھی اور یا تو ڈیموکریسی غربی تھی جس میں دین کو کوئی دخل نہیں تھا. مغرب میں کلیسا کو اور چرچ کو اپنے دائرے اختیار میں جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کرنے کا حق حاصل تھا, لیکن ملک کے نظام میں یا سیاست میں ان کو کوئی دخل اجازت نہیں تھی. تو یعنی انہوں نے دینی نظام کو اور اپنے سیاسی نظام کو الگ کر دیا تھا, دونوں کو الگ کر دیا تھا. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو اور سیاست کو ایک کر کے بتا دیا کہ دیانت کے ساتھ سیاست کی جا سکتی ہے اور دین کے ساتھ مادی امور اور زندگی اور حیات کے دوسرے امور کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھیے, بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے اگر اس کو بیان کیا جائے تفصیل سے, لیکن مجبور ہیں ہم, کہ جب آپ نے خطے کے اس شاہی نظاموں کو دیکھا جو سعودی عرب سے لے کر کے ایران تک قائم تھا, تو اس میں صرف آپ کو ایران کے شاہ کے خلاف آپ کی جد و جہد نہیں تھی, آپ کی جنگ صرف ایران کے شاہ کے خلاف تک نہیں تھی, بلکہ اس پورے خطے میں مسلم امہ کو جو کچلا جا رہا تھا, جو دبایا جا رہا تھا, جو ان کے بنیادی ترین حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا, حتیٰ ایران جیسے ملک میں جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے, اکثریت دین اسلام کو چاہنے والوں کی تھی, ان کی پیروکاروں کی تھی, ان کو پردے اور حجاب کا بھی حق حاصل نہیں تھا. آپ کس ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے؟ اس ڈیموکریسی کو جس میں ایک شخص کو اپنے دین کے اقدار اور اپنے دین کی ثقافت پر عمل کرنے کا حق حاصل نہ ہو, خواتین کے سروں سے چادر چھین لی جائے, اس ماحول میں. اور پھر دوسری طرف سعودی عرب تھا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہمیشہ ہی اسی طرح کا نظام قائم تھا کہ صاحب وہ پورے چہرے چھپائے جائیں, اور اس طرح کا نظام ہو کہ خاتون جو ہے وہ ڈرائیونگ تک نہیں کر سکتی, بازاروں میں جا کر کے اپنی پسند کی چیزوں کا انتخاب نہیں کر سکتی؟ نہیں. یہ جب اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور نظام اسلامی نے ثابت کر دیا کہ جمہوریت کے ساتھ ساتھ دین کو قائم کیا جا سکتا ہے, جمہوریت کے ساتھ اسلام نافذ کیا جا سکتا ہے, اس وقت یہ شاہی حکومتیں خاص طور سے آل سعود گھبرا اٹھی, اور اس نے جو ہے وہ اتنا انتہا پسندی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا دین میں, کہ جو چیزیں دین میں نہیں تھیں وہ بھی بزور شامل کرنا شروع کر دیا. اور آج وہی آل سعود یعنی محمد بن سلمان جو ہیں, اس فہد کے ان تمام احکامات کے جو انہوں نے ملاؤں کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر مسلط کر رکھے تھے, اب اس سے بالکل ہٹ کر کے عمل کر رہے ہیں, اور اب وہ نہ پردے کی وہ صورت حال ہے نہ سماجی بندشوں کی وہ حال ہے. یعنی ایک طرف وہی افراط و تفریط دیکھیے اور اس طرف یہ صورتحال دیکھیے. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ نظریہ پیش کیا کہ اس کے پہلے تک ایسا کوئی نظریہ جو ہے وہ موجود نہیں تھا, اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ اسلام اور جمہوریت کو ایک ساتھ رکھا جا سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت ہی اہم نکات کی جانب اشارہ کیا آپ نے. اور یہ ایسی صورتحال تھی جب اس وقت, یعنی یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی, ماحول ایسا تھا کہ اسلام تو بس कुछ रजत पसंदों का दीन है और इस उन्हीं के लिए ठीक है और कुछ करवट नहीं सकता, और ये साबित तकरीबन हो गया था पूरी दुनिया में। हत्ता मुसलमान जो मुख्तलिफ यानी हत्ता कम्युनिज्म के तरफ माइल हो गए थे बहुत सारे, उसकी वजह भी यही थी। जनाब मीसम रज़ा ख़ान साहब, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पहले के यानी हत्ता कहा जाता है कि वो मुसव्विदा साथ लेकर यानी पहले से उन्होंने तैयार कर लिया था कि पूरा कि किस तरह से इस्लामी जमहूरिया निज़ाम कायम होगा, और यानी ये कि क्योंकि पहले से तैयार था इसीलिए 50 कुरान पे बेस था, तो सबसे अहम चीज़ यही है कि क्योंकि उसके ऊपर बेस था तो पहले से तैयार था मेरे ख्याल में। तो इसे महफूज कैसे बनाया मुस्तकबिल के लिए?
देखिए, पहला सवाल आपने किया नहीं लेकिन पैदा होता है कि इसको तैयार किया था इमाम खुमैनी ने पहले से या नहीं, कुछ लोग बैठे और उन्होंने बैठ करके तैयार किया और फिर इसका मुस्तकबिल बाद में देखेंगे। तो हकीकत तो यही है कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, अलबत्ता ये आपके मुंह से निकल गया था और लेकिन बहुत ही बजा, जी बहुत बजा निकला और ये बहुत ही अहम चीज़ थी। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि एक इलाही शख्सियत थे, वो हमारी तरह से नहीं सोचते थे कि अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा और वो करेंगे तो क्या होगा। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जो ताने बाने तैयार करते थे हमारी तरह नहीं तैयार करते थे कि हम जब कोई बरनामा कोई मंसूबा तैयार करते हैं तो पहले उसमें अपने मफादात को, अपने ख़ानदान के मफादात को, अपनी कौम के मफादात को, अपने मुल्क के मफादात को देखते हैं और उस बुनियाद पर हम उसूलों को मुरत्तब करते हैं, और ये इन सगरा कुबरा के बाद ये नतीजा हमारे मद्देनज़र होता है कि ये चीज़ हमारे फ़ायदे में आएगी। बानी इनकलाब इस्लामी के जितने फ़ैसले हैं वो आप देख लें तो उसमें आपको कहीं भी ये नज़र नहीं आएगा कि उसमें उन्होंने कभी अपनी ज़ात को मद्देनज़र रखा हो या अपने घर वालों को मद्देनज़र रखा हो या अपने ख़ानदान को मद्देनज़र रखा हो। क्यों? इसलिए कि आपका प्रोग्राम जो था, आपका मंसूबा नजफ़ अशरफ से तैयार हो चुका था और नजफ़ अशरफ से उन इस्लामी किताबों की बुनियाद पर तैयार हुआ था जो इस्लाम ने 1400 साल पहले जिन अहकामात और जिन उसूलों को मुरतब फरमा दिया था। यानी आपका इस्लामी निज़ाम वही इस्लामी निज़ाम है जिसका नज़रिया अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने पेश किया है। उस नज़रिए की बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि कब तैयार किया था, वरना इमाम के जहन में वो तमाम अहकाम और उसूल इस्लामी जो मौजूद थे उसी की बुनियाद पर उसी वक्त आप फैसला करते थे दीन की बुनियाद पर और जमहूरियत की बुनियाद पर उसको पेश करते थे कि अब हमने ये दीन पेश किया है, ये नज़रिया हमने पेश किया, अब लोगों की क्या राय है। और आपने हमेशा इस बात पर ताकीद फरमाई है कि काम करना हमारा काम है, अमल करना हमारा काम है, इकदाम करना हमारा काम है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। आपने जंग के सिलसिले में आपने सुना होगा कि जब जंग के बारे में बाज़ चीज़ों की बाज़ लोगों की तरफ से चेमगोइयाँ शुरू हुई तो आपने फरमाया कि हमारी एक तकलीफ़ थी, ये एक शरई जिम्मेदारी थी, नतीजे से हमको कोई मतलब नहीं, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जबकि दुनियावी और मादी तफक्कुर के हामिल अफराद जब कोई इकदाम करते हैं तो वो पहले नतीजे को देखते हैं, लेकिन जब अल्लाह के पैरोकार बंदे जब कोई कदम उठाते हैं तो वो नतीजे को नहीं देखते, वो नतीजे को अल्लाह के हाथ पे, अल्लाह के हवाले कर देते हैं। चाहे आप सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग को देख लें, चाहे आप जो है इनकलाब इस्लामी में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के किरदार को देख लें। अब दूसरी बात, आपका दूसरा सवाल है कि इसका मुस्तकबिल क्या है। इसके मुस्तकबिल की मुझे लगता है कि हमें फिक्र करने की परवाह नहीं करनी चाहिए। आप भी ईरान में रहते हैं, हम भी ईरान में रहते हैं और बहुत से लोग रहते हैं। जब आप यहां के मसाइल को और यहां के उमूर को मादी उसूलों और कानून और हालात के तकाजों की बुनियाद पर तोलना चाहते हैं और तोलते हैं तो देखते हैं कि इसका नतीजा यह निकलेगा। लेकिन जब आप नतीजा देखते हैं, अभी तो सोचते ना कि ये नतीजा निकलेगा, लेकिन जब नतीजा आप देखते हैं यानी जब वो नतीजा सामने आता है तो वो नतीजा ऐन उस दुश्मन की तवक्कुआत के खिलाफ होता है। क्यों? इसलिए कि रहबर इनकलाब इस्लामी का भी सियासत और इकदाम के मुताबिक उसूल यही है कि कदम उठाना हमारा अल्लाह और इस्लाम के उसूलों की बुनियाद पर है, नतीजा देना अल्लाह के हाथ में। जैसा कि आपने भी गुज़श्ता चंद बरसों में देखा होगा कि मादी ताकतों ने और दुनियावी ताकतों ने मुल्क के अंदर किस किस तरह से फितने बरपा करने की कोशिश की, लेकिन रहबर इनकलाब इस्लामी ने बड़े ही इत्मीनान और सुकून से इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर, इस्लामी और अखलाकी अकदार की बुनियाद पर आपने इकदाम किया और नतीजा वह उठा आया सामने जिस पर मगरिब भी हैरतज़दा रह गया। अब इसके मुस्तकबिल को अगर आप देखें तो हम बोल तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम हमारा काम अमल करना है। अब इस्लामी जम्हूरिया ईरान की मिल्लत शरीफ ने रेफरेंडम के बाद ये फैसला सुना दिया दुनिया वालों के सामने कि हमारी जम्हूरियत कोई मादी जम्हूरियत नहीं है, ये इस्लामी जम्हूरियत है, दीनी जम्हूरिया है, इसमें हमारा काम अपने अहकामात पर, इस्लाम के अहकामात पर और फराइज़ पर अमल करना है, नतीजा देना अल्लाह का काम है। अब तक जो नतीजा सामने आता रहा है आपने देखा है, यहाँ से लेकर के मुख्तलिफ़ इस्लामी खित्तों तक, वो ख़ुद इराक़, आपके लेबनान, आपके यमन, आपके दूसरे मकामात पर आप देख लें, ये तमाम जगहों पर मुसलमानों की कामयाबी इस बात का सबूत है कि इस्लामी जम्हूरिया ईरान का मुस्तकबिल या इस्लामी निज़ाम का मुस्तकबिल, मैं ईरान नहीं कहूँगा बल्कि इस्लामी निज़ाम का मुस्तकबिल जो है वो रोशन और ताबनाक है, इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह।